सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। देखो भगवान का यह ग्रंथ बहुत ज्यादा लोगों में प्रचलित नहीं है, शायद आप लोगों ने पहली दूसरी बार ही मतलब हमारे द्वारा ही सुना होगा। इसके पहले विवेक चुगा मगई उपदेश साहसी आदि ग्रंथ तो अपरोक्षानुभूत ये सब तो उपलब्ध हैं और सुने भी होंगे, लेकिन प्रबोध सुधाकर रूपी इस ग्रंथ में भगवान भाष्यकार ने ऐसी ऐसी युक्तियां दी हैं कि जो ज्ञान अभी तक हमने सुना था उस ज्ञान को युक्तियों के द्वारा अनुभव गम्य होने में ज्यादा कठिनाई आती नहीं है, इसलिए हमें यह ग्रंथ बड़ा अच्छा लगा। इसकी हालत आप देखेंगे ओ क्या सेलो टेप चिपका चिपका के काम चल रहा है इसमें, ऐसा जर्जर है ग्रंथ। तो मैंने सोचा इस ग्रंथ पे लिखें, तो इस ग्रंथ पे वो लिखा भी हूं, अन्वय अर्थ सहित टीका व्याख्या भी लिखा हूं। अब हो सकता है कि अगली साल आपको क्या हो जाए, अभी फोटो कॉपी कराना पड़ता है, अगली बार हो सकता है आपको पुस्तक ही अवेलेबल हो जाए, मिल जाए, प्रयास यही मैं कर रहा हूं, तो देखते हैं जैसा भी हो। तो बोध का प्रकरण चल रहा है, किसका प्रकरण है? तो बोध में क्या जानना है, वह ब्रह्म मैं ही हूं, शरीर आदि कल्पित है। शरीर आदि क्या है, जिसे स्वप्न का शरीर कल्पित है, इन स्वप्न के कल्पित शरीर में मैं बुद्धि करके वो कल्पित शरीर भी सत्य सा दिखता है। ऐसे इस कल्पित शरीर में हमने मैं बुद्धि कर लिए तो कल्पित होता हुआ भी हमें क्या दिख रहा है, सत्य सा दिखता है। जिसे भूत कल्पित है या सत्य है, चलो लेकिन कितना उसमें सत्यत्व बुद्धि हमने बना लिया, कितना उसमें सत्यत्व बुद्धि बन गई, नहीं बन गई। आदमी को उसका रूप भी दिखता है, उल्टे गांव में कहावत थी उल्टे पांव होते भूत के, व्यक्ति अपने मन की कल्पना से भूत बना करके उल्टे पांव भी देख लेता है, तब एक स्थूल रूप दिखना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या बताऊं, आप लोग तो मुंबई वाले लोग हो, बाहर रोज कहता हूं, लगे रहो मुन्ना भाई देखा ही होगा आपने है? वो गांधी जी को कैसे पैदा कर लेता होता, गांधी जी उसको स्पष्ट दिखते हैं भले दूसरों को नहीं दिख रहा है, ऐसे जो व्यक्ति डरपोक होगा उसको भूत क्या करेंगे, स्पष्ट दिखेगा, डरेगा, उससे वो बात करेगा लेकिन आपको दिखाई। तो ऐसे ही जिस वस्तु में सुख नहीं है, बार बार सुख बुद्धि कर करके दुख वाली वस्तु में भी हम लोग क्या कर देते हैं, सुख बुद्धि कर ही लेते हैं। तो वास्तव में सत्य तो अपना स्वरूप ही है, और वह स्वरूप इसी शरीर में ही है, सर्वभूताशय स्थित है, संसार के सारे प्राणियों के भीतर अंतःकरण में उसी की परछाई पड़ी है, और उसी की परछाई पड़ करके विशेष सत्ता से दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देना, जहां आपके साथ अंतःकरण मिलता है वहां आपकी अभिव्यक्ति विशेष रूप से होती है, और जहां आपको अंतःकरण नहीं मिलता है वहां आपकी व्यक्ति सामान्य रूप से होती है। लेकिन दोनों जगह है आपकी उपलब्धि है। जैसे मैंने उस दिन कल बताया, परसों रोज बताई रहा, शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उस क्रियाओं का आधार कौन है, वही मैं, चेतन सत्ता। यदि चेतन सत्ता के साथ बुद्धि लग जाती है तो उस क्रिया में कर्तृत्व आ जाता, मैंने किया, और जैसे कर्तृत्व आया तो उस क्रिया में थकावट भी लग जाती है सर्वथा। अब बुद्धि नहीं लगी जहां, जैसे पलक झपकना और बंद करने में बुद्धि लगाना पड़ता है क्या, श्वास लेते हो निकालते हो, बताओ मेहनत, वो बुद्धि लगाते हो क्या, सहज ही हो रहा है। अब कब से श्वास ले रहे हो, थकते हैं क्या आप लोग, बोलो भाई। और प्राणायाम एक घंटे कर लो तो क्यों थकते हैं, क्योंकि प्राणायाम के साथ आप क्या लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, इसलिए थक जाते हो। और बिना बुद्धि के प्राणायाम चल ही रहा है लेकिन उसमें थकावट नहीं होती है। लेकिन दोनों क्रियाएं, चाहे बुद्धि के साथ होवे चाहे बुद्धि के बिना होवे, दोनों क्रियाओं का आधार कौन है, आत्मा ही है। ऐसे ही कहीं आपके साथ अंतःकरण मिल जाता है, बुद्धि मिल जाती है, तो वहां आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व आ जाता है, वहां में आप हमने किया ऐसा भाव आ जाता है। और जहां आपकी बुद्धि नहीं लगती है वहां भी जितनी क्रियाएं होती हैं आपकी सत्ता से होती हैं, लेकिन वहां बुद्धि न होने से वहां में कर्तापन नहीं आता है। लेकिन चाहे सामान्य रूप से व्यक्ति हुए चाहे विशेष रूप से व्यक्ति हुए, सबके रूपों में कौन है, आप ही है। तो पूर्व पक्षी के मन एक संशय आया कि एक आदमी, जब एक ही आत्मा सबके भीतर है तो एक आदमी के मर जाने से सबको मर जाना चाहिए, एक आदमी के मुक्त हो जाने से सबको मुक्त हो जाना चाहिए। तो कहा भाई ये तो ऐसे ही है जिसे ही कई शराव में कसोरे में पानी भरा है, उस पानी में सूर्य की क्या पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, तो किसी कारण बस एक कसोरा टूट जाए तो उस कसोरे में पड़ने वाली जो परछाई है, परछाई की तरह जो उसकी विशेष सत्ता लग रही थी वो तो गायब हो जाएगी। लेकिन क्या सारे कसोरों की में विशेष सत्ता गायब हो जाएगी क्या, तो एक के टूट जाने पर भी उस सूर्य का कुछ भी बाल बांका होता, सूर्य लय नहीं होता है। तभी तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं मौत बेशक इस शरीर की धज्जियां तू उड़ा दे, ये शरीर को तू छोड़ दे, मतलब इस शरीर से पिंड छुड़वा दे, लेकिन इस शरीर के छूट जाने पर भी मेरा लय नहीं होगा। गंगा जी की कलकल के रूप में, पक्षियों की चहचाहट के रूप में, फूलों की सुगंधी के रूप में, हवा के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में मेरी सत्ता का एहसास हमेशा होता ही रहेगा, मेरी सत्ता का कभी लय होने वाला भाई। इस शरीर में मेरी सत्ता का अभाव, जैसे स्वप्न में ध्यान देना, जो शरीर सोया है उस शरीर में आपकी सत्ता का अभाव दिख रहा है, सामान्य सत्ता है तो वहां सुख दुख की प्रतीति नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी कल्पित शरीर में आपकी सत्ता का एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक जगह भले आपकी सत्ता चली जाए लेकिन दूसरी जगह सत्ता तो आपकी बनी ही रहेगी, आपकी सत्ता का कभी अभाव होने वाला है ही नहीं, आप किसी न किसी रूप में प्रतीत होते ही रहते हो। अब किसी न किसी रूप नहीं, हम तो कहते हैं सबके रूपों में किसकी प्रतीत हो रही है, आपकी प्रतीत हो रही है। ये तो शुद्ध ज्ञान है, थोड़ा उसमें देखें व्यवहारिक में हल्का। बीज मरा क्या? देखो बीज की अभिव्यक्ति वृक्ष के रूप में हो गई, नहीं हुई? बीज ही किसके रूप में दिख रहा है? वृक्ष के रूप में। वृक्ष समाप्त होगा, अगले बीज के रूप में किसकी अभिव्यक्ति होगी? उसी बीज की अभिव्यक्ति होगी। ऐसे मेरी अभिव्यक्ति देखा जाए कल तक पिता के रूप में थी। कहां थी? पिता के रूप में कौन था? मैं तो था, पिता से ही तो निकला, या पिता नहीं माता के रूप में था। पहले यहां जाओ, कल तक मैं कहां था? माता और मैं दोनों मिलकर क्या थे? दो नहीं, एक बागी थे। बाद में माता से कहते जैसे गुलाब की एक टहनी को काट करके अलग रोप दिया और उसको वहां से अलग खाना पानी, पहले गुलाब की वह टहनी उस पेड़ से खाना पीना लेती थी, अब उस टहनी को वहां से क्या किया? काटा और दूसरी जगह क्या किया? रोप दिया। अब पानी खाद उसको अलग से देना पड़ता है, यही तो है ना। तो हम पहले किसके अंग थे? मां के अंग थे। मां के खाने से किसकी पुष्टि हो रही थी? मेरी पुष्टि हो रही थी। अब मां से मेरा अंकुर क्या हुआ? कटके, टहनी कटके क्या हो गई? अलग हो गई, यही तो ही ना। अलग जैसे ही हुई तो मेरी अभिव्यक्ति क्या हुई? अलग रूप में दिख रही है। अब उसको अलग से हम खाना पानी दे रहे हैं, लेकिन ध्यान ना, मेरी अभिव्यक्ति होने के पहले मेरी अभिव्यक्ति किसके रूप में हो रही थी? मां के रूप में। मां के रूप के पहले अभिव्यक्ति मेरी किसके रूप में हो रही थी? पिता के वीर्य के रूप में, पिता के रूप में। पिता के पहले मेरी अभिव्यक्ति बीज रूप में। वीर्य किससे बना? बीज से। बीज के पहले अभिव्यक्ति मेरी किसके रूप में थी? जल के रूप में थी। जल के पहले अभिव्यक्ति मेरी किसके रूप में थी? बादल के रूप में थी। बादल से, बादल से पहले मेरी अभिव्यक्ति कहां थे? चंद्रलोक में था। चंद्रलोक से बादल मिला, वहां से पहले मेरी अभिव्यक्ति देवता के रूप में थी। तो मेरी अभिव्यक्ति का कभी अभाव हुआ ही नहीं। हम किसी न किसी रूप में हमेशा प्रकट है ही नहीं, एक रूप नहीं, बल्कि ये तो व्यवहारिक दृष्टि से एक रूप में मैंने बताया। जबकि यदि जगत को कल्पित माने तो सारे संसार के रूप में अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? मेरी ही हो रही है। तो इस तरह से एक कसौरा टूट जाए, मतलब एक शरीर टूट भी जाए, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के शरीर मेरे रहने के लिए कम है क्या? आपके पास पचासों घर हुए, एक घर टूट जाए तो बताओ कोई चिंता होगी क्या? एक कपड़ा चोरी हो जाए तो कोई चिंता होगी क्या? क्योंकि आपके पास कई कपड़े हैं। तो हमारे रहने के लिए एक शरीर थोड़ा ही है। संसार के सारे शरीर ही किसके शरीर हैं? अरे इस शरीर में नहीं रहूंगा, किसके शरीर में रहूंगा? आपके दुनिया के किसके शरीर में रहूंगा? तो हमारे रहने के लिए शरीरों की कोई कमी है ही नहीं। इसलिए क्या करना है भाई? एक कसोरा सकोरा टूट जाए तो भी सूर्य काल है, जिसको अपनी आत्मा में निष्ठा हो गई है ना, वह एक कसोरे के टूट जाने पर भी पक्का निश्चय करता है कि वह लय नहीं होता। आत्मा कभी लय होती नहीं, वह कभी मरता है ही नहीं। अथवा कहते प्रतिबिंब चंचलत्वात अर्क है, प्रतिबिंब के चंचल हो जाने से, जैसे जल हिलडुल रहा हो, जल क्या है? जल की चंचलता के कारण जो उसमें परछाई है, वह परछाई क्या दिखती है? चंचल हिलती दिखती है। तो परछाई के हिलते जुलते हुए दिखने से क्या सूर्य चंचल हो जाएगा क्या? तो आपके कर्म करने से, आपके दौड़ भाग करने से क्या आत्मा में कोई क्रिया हो जाएगी क्या? तो जितनी क्रियाएं हैं हम अंतःकरण के धर्म को आत्मा में आरोपित करके करते हैं, अन्यथा आत्मा में कोई क्रिया है ही नहीं। आत्मा परम शांत है। क्रियाएं किसके कारण हो रही हैं? अंतःकरण के धर्म को किसके ऊपर आरोपित कर लेते हैं? आत्मा के ऊपर आरोपित करके हम आत्मा को क्या मान लेते हैं? बोलो भाई। अरे देखो आप, प्रैक्टिकली बादल चलते हैं, कौन चलता है आसमान में? कौन चलते हैं? बादल। लेकिन बादल के चलने को हम किसका चलना मान लेते हैं? चंद्रमा का या सूर्य का चलना मान लेते हैं। और सूर्य चलता हुआ दिखता भी है, अभी वहां घुस गया, चंद्रमा घुस रहा है, कुछ उस बादल में घुस गया, उस बादल में घुस गया, उस बादल में घुस गया, लेकिन गति किसकी हो रही है? बादल की गति को हम आरोपित कर लेते हैं किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। इसी प्रकार से अंतःकरण की चंचलता को, अंतःकरण के सुख दुख को हम आरोपित कर लेते हैं किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर, जबकि आत्मा सुख और दुख दोनों से भी क्या है? पार है। ये सुख दुख किसका स्वभाव है? बोलो भाई, मन का है, अंतःकरण का है। और सुख दुख मैंने बता रहा है ही नहीं, अंतःकरण का इसलिए स्वभाव, अंतःकरण में आपके भीतर एक मान्यताएं हैं, एक क्राइटेरिया, एक मापदंड बनाए हुए हो। आपके मापदंड के अनुसार कोई घटना घटित हो जाए ना, तो आप क्या मान लेते हो? सुख। अरे आपके मापदंड के अनुसार कोई घटना घटित न हो जाए तो क्या हो जाए? तो जो व्यक्ति अपने मापदंड को हटा ही दिया हो, अंतःकरण में कोई मापदंड बनाया ही नहीं, तो वो जहां भी रहता है हर हाल में क्या रहता है? सुखी और शांत रहता है। इसलिए हर मापदंडों को आप क्या कर दो? हटा दो। आगे चले 126वां श्लोक, क्योंकि भाई बढ़ना है हमें, रोज अब चार का एवरेज लेकर चले तो पूरा होगा। 126। स्व्यापारम कुरुते यथैक सविति प्रकाशेन तदवत् चराचरमिदं ह्येक आत्मसत्तया चलति। कहता यथा एक सवितुः प्रकाशेन, यथा माने जिस प्रकार से, यथा जहां आ जाता है दृष्टांत का ही परिचायक है, जिस प्रकार से, और जहां तथा आ जाए वो दृष्टांत का है। यथा आवे तो क्या सिद्ध होता है? दृष्टांत है, जिस प्रकार से यह होता है उसी प्रकार से वह होता है। तो जिस प्रकार से जहां आवे यथा, तो समझना हमारे सामने क्या आ रहा है? एक दृष्टांत आ रहा है। और जहां तथा आ जाए तो क्या आ रहा है? दृष्टांत आ रहा है। यथा माने जिस प्रकार से, एक सवितुः प्रकाशेन, एक सविता के, सविता माने सूर्य, एक सूर्य के प्रकाश से, प्रकाशेन तृतीया है, प्रकाश के द्वारा, एक सूर्य के प्रकाश के द्वारा, नीचे वाला लेना चराचर इदम, चराचर इदम स्व्यापारम कुरुते, चर अचर इदम तया प्रतीत होने वाला सारा जगत व्यापार करता है, व्यवहार करता है, नहीं करता भाई? एक सूर्य के प्रकाश में ही सारा संसार क्या करता है? व्यवहार करता है। प्रकाश तो चाहिए चाहिए, सूर्य हो या क्या हो, बल्ब हो, नाइट में भी वर्क कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? किसके अधीन होकर काम कर रहे हो? प्रकाश के अधीन होकर काम कर रहे हो। प्रकाश एकदम न हो तो क्या व्यवहार करोगे बताओ? तो जिस प्रकार से सूर्य के ही प्रकाश के द्वारा चराचर इदम, चर अचर इदम तया प्रतीत होने वाला सारा का सारा संसार स्व्यापारम कुरुवत्ते, अपना व्यवहार व्यापार किया करता है, तदवत है उसी प्रकार से, किस प्रकार से? उसी प्रकार से ही माने निश्चय ही, निश्चय मतलब गारंटेड, एक आत्मसत्ता, एक आत्मसत्ता से ही चराचर इदम जगत चलती, चर अचर यह सारा जगत चलायमान हो रहा है, गतिशील हो रहा है, ये निश्चय करके आप जानो। लेकिन फिर वही है कि जिसकी सत्ता से सब कुछ गति दे रहा है, जिसकी सत्ता से सारा व्यवहार चल रहा है, उस सत्ता वाले को कोई पहचानता ही नहीं है, उस सत्ता वाले को कोई जानता है ही नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य है। आप दुनिया में सब कुछ देखते हो, क्या क्या देखते हो बताओ? ये दिख रहा है क्या है? फूल, पत्ता, किताब, लाल रंग, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन एक फूल, पत्ता, किताब जिस प्रकाश से दिख रहा है, वह प्रकाश किसी को दिख रहा है क्या? अभी हम आपसे पूछें क्या देख रहे हो तो क्या बताओगे? आपका मुंह, चश्मा, माइक, पुस्तक, डिब्बी, चाबी, सब कुछ दिख रहा है, लाल रंग, पीला रंग, सब कुछ बताओगे दुनिया की चीजें। लेकिन जिसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित हो रहे हैं, वह प्रकाश है, ध्यान देना, इस वस्तु और हमारी आंख के बीच में क्या होगा? लेकिन वो प्रकाश किसी को दिखता है क्या? वही हालत हमारी हो गई क्या? एक आदमी किसी लीला नाटक देखने के लिए गया, क्या देखने के लिए गया? नाटक देखने के लिए गया। तो देख के वापस आया तो मैंने पूछा भाई वहां प्रकाश देखा क्या? क्या उस नाटक में प्रकाश देखा क्या? अब उसको प्रकाश के विषय में ज्ञान नहीं था, सही बताऊं प्रकाश के विषय में उसको ज्ञान नहीं था। तो कहा वहां नाचने वाली थी, राम थे, लक्ष्मण थे, रावण था, पर्दा था, तखत था, लेकिन प्रकाश तो हमने कहीं। तो कहा जाके देख के बताओ। वो गया वहां, कहा भाई यहां कोई प्रकाश है क्या? अब वहां यहां तो है एक प्रकाश भाई, लेकिन वहां कोई प्रकाश था ही नहीं। तो कहा यहां तो कोई प्रकाश है ही नहीं। तो कहा कि वहां कोई प्रकाश नहीं है भाई। हमने कहा अरे ना समझ, जिसकी सत्ता से ध्यान न, जिसकी उपस्थिति से सब कुछ दिख रहे थे, पर्दा, तखत, लड़के लड़कियां, नाचने वाली, जो दिख रही जिसकी सत्ता से, वह कौन था? प्रकाश ही तो था। वो न होता तो दिखता क्या? लेकिन जब तक उसके स्वरूप का ज्ञान न होवे न, तो व्यक्ति देखता हुआ भी उसको क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है, उसको विषय में जानता नहीं, उसको एक नाम रूप में समझता है। इसलिए एक बार यदि उस सत्ता का अनुभव हो जाए ना, तो आप जहां भी देखोगे उस प्रकाश को भी देखने वाला, ध्यान देना, उस प्रकाश, ये प्रकाश जो है ना एक जड़ है, इस प्रकाश को भी देखने वाले क्या चाहिए? इस प्रकाश को भी कौन सत्ता सिद्ध करता है? देखा जाए आंख, आंख की भी सत्ता को कौन सिद्ध करता है? आंख भी बनी रहे लेकिन मैं न हूं तो मन के माध्यम से, ध्यान देना, मन के माध्यम से चैतन्य आंख के द्वारा आंख को सत्ता न देवे तो आंख को रूप देखने की क्षमता आ सकती है क्या? तो सबसे परम दादा कौन है? अपनी आत्म सत्ता है। यदि वह न हो, लेकिन उस आत्मा की पहचान किसी को होती ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, उस आत्मा को पहचानो। हम 24 घंटे इसी शरीर में ही लगे हुए हैं। भगवान भाष्कर एक बहुत बढ़िया श्लोक कहते हैं, देखो हम सबकी वृत्ति देह कहां लगी है? स्त्री, पुत्र, मित्र, अनुचर, अनुचर माने नौकर, सेवक, हय, हय माने घोड़ा, आजकल घोड़ा नहीं है, आज तक गाड़ियां, कार, 24 घंटे 3 बार क्या करो? कार को साफ करो, धुलो, व्यवस्था करो। विषा, बैल, तोष हेतुर्मम, यही सब मेरे संतोष के हेतु हैं कि नहीं है? भाई क्या नाम था, अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु को सामने द्रोणाचार्य ने क्या रखा? चक्रव्यूह बनाया, और जो इस चक्रव्यूह को पार कर लेगा वही बाहर निकल लेगा, नहीं निकल लेगा? सबने कहा तू घुस तो, मैं हूं ना, मैं निकाल लूंगा। उसने कहा भाई 6 दरवाजे आज तक मैं जानता हूं, 7वें दरवाजों को मेरे को निकलने की क्षमता, अरे तू घुस तो, 6 तोड़ मैं 7वां निकाल लूंगा, लेकिन कोई निकालने में समर्थ हो सकता है क्या? बोलो एक वो चक्रव्यूह जो रचा होगा द्रोणाचार्य ने, वो तो द्रोणाचार्य ही जानेगा, और कौन जानेंगे? अभिमन्यु जानेंगे जिन्होंने तोड़ा है। लेकिन हम लोग जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं ना, ऐसा ही बताओ, इस चक्रव्यूह से ऊपर हम उठ नहीं पाते हैं। 24 घंटे देखो, या तो हमारा एक धन का चक्रव्यूह है, धन से हम आजाद हो पा रहे हैं क्या? धन से हटे तो परिवार के चक्रव्यूह में फंस गए, बताओ अलग हो पा रहे हैं? परिवार से हटे तो पत्नी, पत्नी तो अपनी अंतरंग है ना, इसलिए उसको परिवार में न लेकर गए। परिवार में क्या हुआ? भाई, चाचा, ताऊ, ये सब परिवार में क्या गया? और पत्नी, पत्नी से हटे तो कहां? पुत्र, पुत्र से हटे तो बोलो भाई, शरीर, शरीर से हटे तो सम्मान। इन्हीं सारे चक्रव्यूहों में हम क्या किए हैं? फंसे हुए हैं, और इन सारे चक्रव्यूह को तोड़ करके हम अपने स्वरूप में स्थित है। इसलिए जब तक 7 दरवाजे को तोड़ोगे नहीं, तब तक आपको अपने स्वरूप की उपलब्धि, इसलिए कृष्ण राम वो भागवत कथा में मैं बताता हूं कभी कभी, जब तक अपने 7 पुत्रों को मारोगे भी नहीं, क्या है, अपने 7 पुत्रों को मारोगे नहीं, तब तक 8वां पुत्र कृष्ण पैदा भी होने वाला नहीं है, जान लेना। इसे 7 पुत्रों को मारना अब कौन मारेगा? कंस ही मारेगा। कंस माने इस अभिमान के साथ ही साधना करते हैं कि अन्नमय मैं कोष हूं, ये मेरा पुत्र हुआ, इसको हटाया, फिर कौन सा पुत्र है अन्नमय से हटे तो क्या हुआ? प्राणमय। प्राणमय से हटे तो मनोमय, मनोमय से हटे तो विज्ञानमय, विज्ञानमय से हटे तो आनंदमय, आनंदमय से हटे तो इन सबका कारण अज्ञान। इन सबका कारण क्या है? अज्ञान। इनसे भी हटे तो नहीं, इन सबका कारण अहंकार, मैं, इनमें मैं बुद्धि ना अहंकार। इनसे भी हटे तो अहंकार का भी कारण अज्ञान। जब तक ये सातों पुत्र, पांच कोष का कारण कौन है? अहंकार। अहंकार का भी कारण कौन है? अविद्या, अज्ञान। इन जब तक ये सात पुत्रों को मारोगे नहीं तब तक कृष्ण का आविर्भाव नहीं होगा, ये पक्का जान लेना। इसे मारना जरूरी है, ये साधना है। भागवत कथा मनोरंजन नहीं है। हम लोग भागवत कथा को क्या कर समझ लिए हैं आजकल? इंटरटेनमेंट सा समझ लिए हैं, लेकिन भागवत कथा मनोरंजन नहीं है। भागवत कथा का तत्वतः चिंतन करो तो लगता है कि आठवें पुत्र को इसे देखना। जैसे आठवां पुत्र पैदा हुआ, भक्ति वाला तो मान लेगा, क्या मान लेगा? भगवान पैदा हुए, सबकी जंजीरें क्या हो गई? खट 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 टूट गई। अब पिक्चरों में दिखा भी देते हो, किसमें? टीवी में दिखा भी देते हो। और जैसे वहां से वो लाए, कौन है? भगवान को रखा कहां? गोकुल में। और वहां से कन्या को लाए, सबकी जंजीरें नीचे से उछल करके कहां गई? सबके जकड़े में बन गई। कभी कभी लगता है कि कैसे संभव हो सकता है। तो भाई देखो, भक्ति के रास्ते में तो बोल सकते हैं भगवान की महिमा, वो तो क्या नहीं कर सकता है, ये बोल सकते हो। लेकिन वेदांत वाले तो थोड़ा क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। जब तक उनकी बुद्धि में वह बात, युक्ति से वह बात बैठेगी नहीं, तब तक उस बात को मानेंगे? हमें लगता है जंजीर नीचे से ऊपर उठ करके फिर से बंध गई, वो हाथ स्वतंत्र कर दिया होगा, हाथ इसे बंध गया, ये कैसे हुआ होगा? लेकिन वही लगता है, जैसे ज्ञान पैदा होगा जीवन के सारे बंधन क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। यही तो है ना बंधन छूटने का मतलब। बुरी वृत्तियां जितनी भी होंगी सब शायद क्या हो जाएंगी? सो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उस ज्ञान को भी प्रकट नहीं करना, अभी ज्ञान थोड़ा कमजोर है। तो हमें ज्ञान कभी अनुभव होता है ना तो हम गाना शुरू कर देते हैं, और हम ज्ञानी नहीं बन पाते, ज्ञान बंधु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ज्ञान बंधु बन जाते हैं, ये बुरा। इसलिए उस ज्ञान को छिपा लो, कहां? गोकुल में। ज्ञान को कहां छिपाना है? इंद्रियों के बीच में छिपा लेना है, और वहां से कन्या ले आकर के स्वीकार कर लेना है। कन्या माने माया, अविद्या को मान लो, स्वीकार कर लो, मतलब अंदर से ज्ञानी बनो और ऊपर से क्या करो? अज्ञानी जैसा रहो। अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करो, ऊपर से क्या करना है? अज्ञानी जैसा व्यवहार करना है, ध्यान देना। हम तो अंदर से अज्ञानी रहते हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं? ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन होना चाहिए उल्टा। होना क्या चाहिए? अंदर से आप क्या बनो? ज्ञानी बनो, और ऊपर से क्या करना है? अज्ञानी जैसे व्यवहार। भगवान ने नहीं कहा क्या? अंदर से ज्ञान होते हुए भी अज्ञानियों के बीच आप क्या करना? अज्ञानी जैसे व्यवहार करना। कहा नहीं कहा भगवान? उनको उस शास्त्र निकालने का ही तरीका है। और दूसरा क्या करना है? जैसे अज्ञान को लिया सबकी, अज्ञान को लिया सब पगड़ियां लग गई, लगी नहीं, लगी सी हो गई। मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा बंधु सब बोलो, लेकिन अंदर से क्या रहो? असंग, निर्लिप्त आत्मा बने रहो। ऊपर से सबको स्वीकार कर लो, सारे बंधन को मान के चलो, लेकिन अंदर से क्या रहना? असंग, निर्लिप्त आत्मा बने रहना। और अपने अंदर जितने विकार हैं उस ज्ञान को छिपा छिपा करके, छिपा के ही एक एक विकार को मारते जाना। इसलिए भगवान कृष्ण ने गोकुल में छिप करके ही क्या किया है? सारे दरवाजे काटे हैं, नहीं काटे हैं। बकासुर को मारा। बकासुर किसका प्रतीक था? छल का प्रतीक है। कभी कभी आडंबर ढोंग नहीं करते, उसको भी मारना है। एक आया था तूफान बन करके, क्या नाम था? त्रिणावर्त था। हम भी तूफान बनकर सारी दुनिया में क्या करना चाहते हैं? छा जाना चाहते हैं सारी दुनिया में, सारे घरों में किसकी तस्वीरें लग जाएं? बोलो भाई, मेरी तस्वीर लग जाए, मेरे नाम की सारी जगह में क्या हो जाए, ये जो सम्मान की वासनाएं हैं, इस वासना का नाम क्या है, तृणावर्त है। एक घोड़े को मारा, घोड़ा कर्म का प्रतीक है, एक एक असुर है, अजगर है, पाप का प्रतीक है। एक एक असुरों को, एक एक भीतर की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को क्या करो, धेनु का असुर है, संग्रह का प्रतीक है। हम भी बहुत संग्रही बन गए हैं, बहुत कुछ इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्यों कर ले, क्या करेंगे, सांप को मार डालो, और जब सब वृत्तियां शांत हो जाए तो वह ज्ञान क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। और जैसे ज्ञान प्रकट हो जाएगा ना, तो कंस का तो सियावर रामचंद्र हार्ट अटैक हो जाएगा। कंस तो अपने आप, कंस को मारना नहीं पड़ेगा, ज्ञान जैसे हुआ तो अभिमान अहंकार तो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसे अहंकार समाप्त हुआ तो आप मथुरा की गद्दी पर बैठ जाओगे। मथुरा माने क्या हुआ, आपने स्वरूप स्थिति हो जाओगे, आपकी स्वराज्य सिद्धि हो जाएगी। अपना जो राज्य है ना, अभी हम अपने राज्य में नहीं बैठे हुए हैं, किसके राज्य में बैठे हुए हैं बोलो भाई, दूसरे के राज्य में अधिकार किए हुए हो बताओ। और दूसरा कब कान पकड़ के उतार देगा कोई पता है क्या भाई, शरीर पे बैठोगे और यमराज महाराज कब आकर के इस शरीर से उतार करके किसी दूसरे गद्दी पे बैठा देंगे, कोई भरोसा है क्या। तो अभी तो हम दूसरे के राज्य में बैठे हुए, दूसरे पे अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। और जिस दिन आप अपने स्वरूप पर स्थित हो जाओगे, कोई माई का लाल आपको उस गद्दी से उतारने वाला होगा नहीं, वह गद्दी है आपका अपना कौन स्वरूप है। इसी को मैंने अभी पहले बताया कि देवता भी आपको उस गद्दी पर, आपको अपने स्वरूप से च्युत करने में समर्थ होते नहीं है। तो हम तो सोचते हैं आप अपनी उसी गद्दी पे बैठो, ये सारे बंधनों को क्या करो बोलो भाई। ये जो चक्रव्यूह के दरवाजे हैं ना, वो तो अंतरंग दरवाजे मैंने बताया, पांच कोष, कौन से पांच कोष, अहंकार और अविद्या। बाहर के जो दरवाजे हैं, यहां मैंने बताया बाहर के दरवाजे कौन कौन से हैं भाई, देह है नहीं? अब अपना दरवाजे देखते जाना, स्त्री पुत्र सबके दरवाजे अलग अलग हैं। देह, स्त्री, पुत्र, मित्र कितने हो गए, अनुचर, सेवक कितने हुए है, घोड़ा, बैल है, ये सब साधन हो गए ना। तो एक दिशा तोष हेतुर्मम, मेरे संतोष के विषय हैं, मेरे सुख के विषय हैं, मेरे आनंद के क्या हैं, विषय हैं। और सारे के सारे लोग अपनी सारी जिंदगी, सर्वे स्व आयुर नयंती प्रथितम अलम अमी मांस मांसया ई है, सारे की सारी लोग अपनी सारी बहुमूल्य जिंदगी इसी की ही मांस मीमांसा में ही लगा देते हैं। ए खुश तो मैं खुश, ए पुष्ट तो मैं पुष्ट, इनके अलावा इस चक्रव्यूह से निकलने की सोचते ही नहीं है। चक्रव्यूह से कौन निकल सकता है, कहते एते जीवंती न, ए सब के सब जिसके कारण से जीवित है, व्यवहित पटे हुए न, जिसके कारण से सब व्यवहार में कुशल हो रहे हैं, चल फिर बोल सारा व्यवहार कर रहे हैं, एन सौभाग्य भाजम, जिसके कारण से ये सब सौभाग्यशाली बने हुए हैं, कितनी सुंदर से सुंदर पत्नी होवे, इन आत्मसत्ता, आत्मा की विशेष सत्ता, आत्मा की सत्ता तो रहेगी, मरने में भी रहेगी, इन आत्मा की विशेष सत्ता से जैसे रहित तो हो जाए, वह उसी पत्नी को छू करके क्या करते हो, जब जला के आते हो रात भर इसको रखना चाहते क्या घर में, अरे जल्दी जल्दी करो, कौन रात भर इसके साथ बैठेगा, इस मुर्दे के साथ है? अब उसको जला के आते हो क्या करते, दूरी रहना, पहले बाथरूम में घुसना, जरा सा दरवाजा खोल कर टावल वगैरह मैं बाद में पहुंचा दूंगी, मतलब उस तौलिया को लेकर के यदि बाथरूम में गए तौलिया भी अशुद्ध हो गई, बताओ आप इतने अशुद्ध हो गए, इसलिए पहले नहाओ फिर तुम शुद्ध हो गए, तौलिया मैं बाद में दूंगा आपको। तो बताओ ये सब पवित्र सौभाग्यशाली किसके सत्ता से हुए हैं, उस आत्मी की सत्ता से, लेकिन उस प्राणाधीशम, उस प्राण का जो अधीश्वर है, अंतर्गतम जो सबके भीतर विराजमान है, अमृतम अमुम जो अमर अमरण धर्मा है, अमृत स्वरूप है, नैव मीमांसयति, उस तत्व का कोई व्यक्ति विचार करता ही नहीं है, और जिसको देखो वही विचार करने में लगा हुआ, क्या वजन कितना हो गया, रंग कैसा हो गया, वेतन कितना हो गया, कहाँ कहाँ सम्मान मिल गया, कितनी गाड़ियां आ गई, कितने घोड़े हो गए, कितने बंगले हो गए, 24 घंटे चिंतन किसका चल रहा है, इदंतया प्रतीत होने वाले जगत का। और जो इदंतया जिस अधिष्ठान पे टिका हुआ है, मैं पे टिका हुआ है, उस अहम का किसी को कोई विचार है ही नहीं। चलो भाई ये तो करना किसका काम है, हम सब करें करें, जब तक करेंगे नहीं, उस आत्मा का चिंतन करेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में शांति आने वाली है ही नहीं। इसलिए यहां बताया, सबके भीतर विचार करते हुए, सबको चलते हुए, जैसे एक बल्ब है, ध्यान देना, बिजली की देखा है आपने, बिजली को देखा नहीं ना, छुआ भी नहीं है, लेकिन बिजली के कार्य को देख करके पावर है ऐसा ज्ञान होता ही नहीं होता। बता, हवा ठंडी ठंडी बहे तो क्या कहते, कहीं कहीं बारिश हुई होगी अथवा बारिश ओ बर्फ गिरा होगा, कहते हो नहीं कहते हो, देखा नहीं लेकिन अनुमान से आप प्रत्यक्ष का क्या कर लेते हो, एहसास कर लेते नहीं कर लेते। तो ऐसे बिजली को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, हाँ, कार्य को देख करके कारण को जान लेते हो। ऐसे आंखें देख रही हैं, कान सब सुन रहा, दुनिया के सारे व्यवहार चल रहे हैं, तो जिसकी सत्ता से चल रहे हैं वही सत्ता तो कौन है, परमात्मा ही नहीं परमात्मा है, तो वो सत्ता आपको 24 घंटे दिख रहा नहीं दिख रहा, बताओ नहीं दिख रहा है। अरे भाई आंख सारे रूप दिख रहे हैं, तो इससे सिद्ध किसकी हो रही है, आंख की सिद्धि हो रही नहीं हो रही है, आंख भी देखने में समर्थ हो रही है, इससे सिद्धि किसकी हो रही है, आत्मा की हो रही नहीं हो रही, मेरे बता दो। तब आंख को देखने के लिए क्या दर्पण चाहिए, क्या हम बोल रहे हैं इससे सिद्धि किसकी हो रही है, मुख में जिह्वा, अब हमें पता नहीं, आप कहते हो जीवा में है, लाओ शीशा देखें, जीभ निकाल के देखें, तब हम जीभ का अनुमान जानेंगे, अथवा बोल रहे हैं इसी से सिद्ध हो रहा कि मेरी मुख में जीभ है, बोलो भाई। ते सारा संसार अब कहो नहीं महाराज जी, जो व्यवहार नहीं कर रहा, कहां नहीं व्यवहार चल रहा है, आप देखो जिसको आप जड़ मानते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी जानते हो किस गति से घूम रही है, हमें भूल गया, इतनी तेज गति घूम रही है, 24 घंटे में पृथ्वी एक पूरा क्या करते हैं, राउंड घूम जाती है, कितनी तेज गति होगी, और वो पूरा एक साल में पूरा सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वो घूम जा रही है, कितनी तेज गति है। आजकल तो नियम हो गया, मालूम नहीं मालूम है, रिसर्च चल रहा है, अभी तो विमान ही जाता है उड़ने के लिए, नहीं अब खोज चल रही है कि विमान सीधे यहां से स्पेस में जाएगा, कहां जाएगा, 12 घंटे में पृथ्वी कहां जाएगी, वहां जब जैसे भारत अमेरिका विमान कहां गया, सीधे ऊपर गया, घूमते घूमते जब पृथ्वी कहां आ जाएगी, उस विमान के नीचे आ जाएगी, तो विमान वहां से क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, अब बस पृथ्वी आ जाएगा, मतलब विमान कहीं नहीं चलना पड़ेगा, कहां चलना पड़ेगा, ऊपर, अब पृथ्वी घूम के तो ही आ ही जाएगी। अरे भाई आप लोग तो जानते ही हो, क्या बोलते हैं, जब ट्रेन से जाते हो तो अपना सामान लेने के लिए क्या करते हो, उस ट्राली के साथ घूमते हो या खड़े रहते हो, ट्राली घूम करके अपने आप कहां जाती है, आपके सामने आ जाती है, अपना बैग उठाते हो और क्या करते हो, चल देते हो। इसी तरह से पृथ्वी रूपी ट्राली चल रही है, और चलते चलते जब मेरा देश आ जाएगा तो विमान वहां से क्या करेगा, नीचे उतर करके आ जाएगा, और क्या, अरे चल रहा खोज, हो सकता आज नहीं कल, कल नहीं 10 साल बाद, आप इसी तरह से यात्रा करो, क्या पता है, चलो जो भी है। तो ये पृथ्वी जो घूम रही है, पृथ्वी के भीतर कोई सत्ता है ही नहीं, बताओ, चंद्रमा के भीतर कोई सत्ता ही नहीं, सत्ता है, बताओ, आप उसको जड़ मानते हो, जबकि मैं कहता हूं बिना चैतन्य के अधिष्ठित हुए पृथ्वी में गति हो सकती है क्या, अरे ये शरीर भी क्या है, जड़ ही है, शरीर में भी गति नहीं हो सकती है, एक यदि सत्ता, विशेष सत्ता ही शरीर में न आवे न, तो जीव बाहर निकली निकली, आंख खुली खुली, आंख भी पलक मरता है तो आंख खोले मर जाता है, फिर बाद में बंद करते हैं उंगली से, एक उंगली भी नहीं हिला सकते उसकी सत्ता के बिना, बुरा, इतनी पृथ्वी इतने सालों से घूम रही है, सूर्य इतने सालों से मैं एनर्जी दे रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है, ये सब किसकी सत्ता से हो रहा है, बुरा, इन सबको देख करके आपको भगवान नहीं दिखता क्या, बोलो भाई, परमात्मा आत्मसत्ता का अनुभव नहीं होता क्या, हमें तो भाई पता नहीं, सबके रूपों में। इसलिए कहता हूं आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं, आंख खुली है तो भी आपको परमात्मा दिख ही रहा है। सबके रूप में किसकी सत्ता है? तदवत उसी तरह से चराचर इदम, चर अचर यह जगत है। चर अचर को दोनों तरफ ले जाना, देहली दीप न्याय की तरफ है। सुना ना, पहले दीपक होता था, अब एक ही दीपक है। आपके घर में तो कई बल्ब हैं, तो मिट्टी का तेल भी बचाना है, तो एक दीपक को देहली पे रख देते थे, तो उसका प्रकाश इस घर में भी और उस घर में भी पड़ता है। तो चराचर इदम को ऊपर भी ले जाना और कहां ले जाना, नीचे भी ले जाना। तो सूर्य की सत्ता से जिसे सारा संसार व्यवहार करता है, नहीं करता, सूर्य के उदय होते ही जल गो, नहाओ धो, काम पे जाओ, सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लगते ना। उसी प्रकार से उस आत्म सत्ता से ही यह सारा का सारा चर अचर जगत क्या हो रहा है, व्यवहार सक्षम हो रहा है। तो सब क्रियाओं का आधार कौन हो गया? मैं, मेरी सत्ता से सारी गति हो रही। स्वप्न में जितनी भी गति हो रही है, जितनी हाय तो बाप दौड़ भाग हो रही है, उस सारी गति का आधार कौन है? मैं ही हूं। नहीं कहो महाराज जी, जब एक ही काम करने वाला है तो उसको एक ही तरह से काम करना चाहिए था, बुरा बुरा काम क्यों कर रहा है? नहीं कभी कभी लगता ना आपको, जब आप लोग बोलते हो ना क्या कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, उसमें इच्छा नहीं है, ये हम गलत बोलते हैं। उसकी इच्छा के बिना नहीं है, उसकी सत्ता के बिना। क्या बोलना चाहिए? उसकी इच्छा के बिना नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इच्छा तो आपके अंतःकरण की होती है, उसकी इच्छा नहीं है, ध्यान देना, उसकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इच्छा नहीं बोलना, हम लोग इच्छा बोल देते, इच्छा गलत है, क्योंकि वो इच्छा अनिच्छा दोनों से क्या है, परे है। तो महाराज जी इतने गंदे गंदे व्यवहार क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? कहा भाई देखो, उसमें उस परमात्मा का कोई दोष नहीं है। क्या है दोष बताओ? क्योंकि इच्छाएं अंतःकरण तो सब आपके अपने हैं ना, तो जिसके अंतःकरण में जैसे जैसे संस्कार भरे होंगे ना, उस सत्ता से उसी प्रकार से व्यवहार करेगा। अब बताओ उसमें बिजली का दोष क्या है? बिजली को आप चाहो तो क्या दे सकते हो, प्रकाश ले सकते हो, या उस बिजली से किसी की जान भी बचा सकते हो, और उस बिजली से किसी का जान ले भी सकते हो, तो पाप पुण्य किसको लगेगा? बिजली भी लगेगा क्या? बिजली उसमें क्या करने, बिजली न बचाने वाली है न क्या करने वाली है, बस सत्ता देने वाली है। और उस सत्ता का आप चाहे उपयोग कर लो, चाहे क्या कर लो। आजकल एटॉमिक एनर्जी का बहुत चल रहा है, उससे चाहे बिजली पैदा करके सारे संसार को क्या कर दो, प्रकाशित कर दो, अथवा उससे एटम बम बना करके सारी दुनिया का क्या कर दो, विनाश कर दो। अब उसमें उस एटम का क्या वो है बताओ, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, उनके क्या दोष है बताओ? उन पदार्थों का कोई दोष है क्या? अब उसका उपयोग दुरुपयोग करना किसके अधीन है? तो इसको बता रहे हैं 127वें श्लोक में। एनो दकेन कदली चंपक जात्यादय प्रवर्धन्ते मूलक पलांडु लसुनास तेने वैते विभिन्न रसगंधाः। एन उदकेन, जिस जल से, उदक माने हुआ जल, उदक माने क्या हुआ, जल, जिस जल के द्वारा, जिस जल का सिंचन करने से कदली माने केला, चंपक माने चंपक चंपा, और जाति एक फूल है, जाति एक फूल का नाम है, सुगंधित फूल होता है, जिसे जपा है ना, जपा फूल लाल, इसे जाति एक फूल है। तो जाति आदि के पौधे बढ़ते हैं, जात्यादय है, आदि माने और भी कई ले लो, गुलाब ले लो, कई भी ले लो, कमल ले लो, प्रवर्धन्ते ये सब बढ़ते हैं। तो बताओ केले में, चंपक में, जाति में, सब में पानी एक ही डालते हो, अलग अलग पानी डालते हो है? कि उसके लिए वो पानी, दूसरे के लिए दूसरा पानी, तीसरे के लिए तीसरा पानी। अरे भाई वो क्या बोलते हैं, वो होता है खट्टा खट्टा आंवला, आंवला में वही पानी डालते हो, वही पानी आम में भी डालते हो, वही पानी मिर्ची में भी डालते हो कि पानी अलग अलग होता है। उस कहते हैं वही बता रहे हैं, ये दृष्टांत है, मूलक पलांग लसुना है, उसी जल से मूली खाओ तो मुख में क्या आती है, दुर्गंध है, लसुना है, लहसुन और पलांडू, पलांडू माने यहाँ क्या बोलते हैं, नहीं डुंगरी तो वहां बोलते हैं, यहाँ कांदा, कांदा पलांडू माने क्या हुआ, कांदा, डुंगरी तो वहां गुजरात में बोलते हैं। तो मूलक पलांडू लसुना तेन एव, तेन एव उदकेन, उसी ही जल के द्वारा एते विभिन्न रसगंधा, अनेक प्रकार के रस, अनेक प्रकार के गंध को एक ही जल के द्वारा पैदा हो रहे, नहीं हो रहे हैं। तो बताओ उसमें जल का कोई दोष है क्या? रहीमदास जी ने दोहा लिखा है, आप लोग सुनो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति गुण एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे फल देते। एक ही बूंद है, कौन सी, स्वाति नक्षत्र की बूंद, लेकिन वही कदली में पड़ जाए, ध्यान देना है, क्या पड़ जाए, केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है, केले में पड़ जाए तो कपूर में सुगंध आ जाती है, कपूर माने सुगंध, केले में क्या आती है, खुशबू, एक महक आती नहीं आती है। सीप में पड़ जाए तो क्या बन जाएगी, मोती। अब भुजंग में पड़ जाए, सांप के मुंह में चला गया तो क्या पड़ जाएगा, जहर। लेकिन एक गुण है, स्वाति क्या है, स्वाति की बूंद में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे साथ उसको मिलता है वैसा उसका व्यवहार हो जाता है। इसमें बताओ उस बेचारे पानी का कोई दोष है क्या, मेरे को बता दो, नहीं दोष है ना, उसी प्रकार से उस आत्मा का कोई दोष है ही नहीं, इसलिए वो परमात्मा का ज्यादा दोष उसी सुने करो, वो परमात्मा की परछाई जैसे अंतःकरण में पड़ती है, आपके अंतःकरण में जैसे संस्कार होता है वैसे संस्कारों के अनुसार क्या कर देते हो, क्रिया आदि करना शुरू कर देते हो। तो हम संस्कार के अधीन हो गए, नहीं हो गए, तो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है कि अपने संस्कारों को क्या करना, कम करना, ज्यादा करना, मिटाना, उत्पन्न करना, ये सब किसके अधीन है, बोलो भाई, क्योंकि संस्कार बाहर से लादे गए हैं, तो बाहर से जो लादा गया है उसको बाहर क्या करते, छोड़ भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, तो आप संस्कारों को ठीक कर लो तो ठीक ही है। अब इसके विषय में क्या बताएं, जैसे एक पेड़ है, पेड़ लगाओ तो पहले तो उसको सुरक्षा करनी पड़ती है, और जब वृक्ष बन जाए तो क्या हो जाता है, अगल बगल की घासें अपने आप क्या हो जाती है, सूख नहीं जाती। तो उसी प्रकार से आप अपने भीतर यदि सत्संग आना शुरू कर दो, एक बार कहां प्रेमपुरी माना शुरू कर दो, तो क्लब है और दूसरी जगह जाना अपने आप क्या हो जाएगा, ताश फिल्म अपने आप क्या हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा मजबूती साओ तो, हम तो एक दिन आते हैं 10 दिन वहां जाते हैं तो हमारा वो वाला वृक्ष मजबूत हो जाता है, यह वाला सूख जाता है। होना क्या चाहिए, जो पौधा उगा है ना अंकुर, उसको खूब खाद पानी देकर क्या बना दो, वृक्ष बना दो। सच बता रहा हूं, मेरे को इन पुस्तकों में जितना रस आने लगा ना, पहले मैं भी बहुत वो पढ़ता था, क्या उपन्यास, सत्य कथा, फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां, पता नहीं क्या क्या आता था, हम भी पढ़े हैं, सहेली सहेला कितनी पत्रिकाएं आती थी, मंगाते भी थे, लेकिन सच बताऊं अब एक भी पत्रिका छूने की इच्छा ही नहीं करती है, क्योंकि जब रस इसमें आ गया ना तो सारे संसार के रस क्या हो गए, फीके हो गए। इसलिए मेरे भाई अपने उन संस्कार को थोड़ा इधर कर दो, और जैसे ही ये रस मिल जाएगा तो ये यहां की दौड़ भी, ये संस्कार भी अपने आप क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। फिर इसको पानी देना नहीं पड़ेगा, जब वृक्ष पेड़ बन जाएगा ना तो इसको पानी क्या हो सकता, वो पानी अपने आप क्या करेगा, खोज ही लेगा, तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वाभाविक क्रिया आपके द्वारा अपने आप हो ही जाएगी, फिर वो कर्तृत्व भाव जो है ना, मुझे करना चाहिए, ये भाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक ही सत्ता सबके भीतर अनुसूत होकर के सब प्रकार के व्यवहारों का कारण बन रही है, किसके कारण, बोलो भाई, सबके अंतःकरणों में रहने वाले संस्कारों की भिन्नता के कारण। अब आगे चलते हैं, एको ही सूत्रधार काष्ठ प्रकृति रनेकोस रनेकसो युगपत स्तंभा अग्र पट्टिकायाम नर्तयतीह प्रगूढ़तया। तो एको ही सूत्रधार है, एक ही जो सूत्रधार है। सूत्रधार माने क्या हुआ? कठपुतली को नचाने वाला, सूत्रों को पकड़ने वाला, सूत्रों का जो आधार है, जिसके आधार पे सारे सूत्र क्या हैं, धागे कितने होते हैं, वहां से लेकर के धागे सब होते नहीं होते हैं। हमने देखा नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा, कठपुतलियों का नाच देखा नहीं देखा है? तो कठपुतलियां मान लो इतनी बड़ा मंच है, तो सारे धागे की डोर कहां होगी? एक की सारी उंगलियों में होंगी। तो वही कहते हैं एक ही जो सूत्रधार है, काष्ठ प्रकृति अनेकसो युगपत। काष्ठ प्रकृति माने काठ की अनेक प्रकार की पुतलियों को एक साथ ही स्तंभ अग्र पट्टिकायाम, स्तंभ मतलब किसी मंच पर, स्तंभ माने किसी मंच की पट्टिकी पर, जैसे छिप करके ही सबको नचाता रहता है। सामने आता है क्या? वो दिखाई देता है क्या नचाने वाला? आपको कठपुतलियां नाचती रहती हैं, लेकिन वो दिखाई देता ही नहीं है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा सबके अंतःकरणों में तगोड़तया छिप करके हर प्रकार की इंद्रियों को सत्ता दे करके हर प्रकार के व्यवहार में कुशल। वही उमादार्यो सित की नाई सबह नचावत, आप सब जानते हो, ठीक है ना? लेकिन बस बड़ी मुश्किल काम है, हम उसकी नाच में ही खो जाते हैं, उस नचाने वाले को देख ही नहीं पाते हो, सत्ता को देख नहीं पाते हो। और जिस दिन आप सत्ता को देख लोगे ना, उस दिन नचाने वाले का राग द्वेष मेरा तेरा सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बचपने में गांव के लोग जानते होंगे, बारात जब जाती थी तो घोड़े की नाच हुआ करती थी, देखा है नहीं देखा है? कार्डबोर्ड वाला घोड़ा होता, दफ्ती का घोड़ा, और उसमें एक आदमी बीच में घुस जाता था, झूम झूम करके बहुत बढ़िया नाचता था। तो छोटे बच्चे, वो बारात अच्छी मानी जाती है, घोड़े की नाच आई है चलो देखते हैं, जाते थे। तो बच्चों में छोटे छोटे बच्चे से विचार होता था वो घोड़ा असली है नकली है। अरे आप बोलते हो नकली, बच्चे से पूछो, बच्चा क्या बोलेगा? कोई कहेगा असली है, क्योंकि उसकी लगाम दिख रही है, दांत दिख रहे हैं, वो चल रहा है, चल रहा है, नकली कैसे हो सकता है? तो हम लोग जब घोड़ा नाचता था ना, जैसे घूमता था, तो उसका जो घाघरा था ना, थोड़ा सा क्या होता था, ऊपर उठता था, तो हम लोग झांकते थे नीचे, झांकते नीचे, देख दो पांव है तो क्या है, नकली, और चार पांव है तो असली, तब डिक्लेयर होता था, जान लेना। बच्चे की बुद्धि जैसी होती थी वैसे। तो देखना भाई, एक घोड़ा है, कौन, जैसे वो लकड़ी का घोड़ा था, उसमें नचाने वाला कौन था? कोई और। तो ये शरीर रूपी क्या है? घोड़ा है। इस घोड़े के भीतर जो नचाने वाला है वह कोई और है। हम इसके नाच को ही देखते रहते हैं, लेकिन इसके नचाने वाले के प्रति जो छिपा हुआ सा है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है। जिस दिन नचाने वाले के प्रति दृष्टि चली गई, तो नाच सारी आपके लिए क्या हो जाएगी? महत्वहीन हो जाएगी, फिर नाच का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इन सब व्यवहारों का मूल कौन है? वह परमात्मा ही तो है। एक रामतीर्थ कथा करते थे, आप लोग सुने ही होंगे, क्योंकि इतने सालों से कथा सुन रहे हो, जितनी उम्र मेरी उम्र हो गई होगी, इतने साल तो आपको कथा में आते हो गए होंगे, कई लोग हो गए, लेकिन फिर भी रामतीर्थ आए किसी सत्संग भवन में या कुछ भी होगा, बता रहे थे, कोई व्यक्ति आया, वो प्रसाद बांट रहा था। तो सबके मन में जिज्ञासा होती, प्रसाद किस बात के लिए बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो भाई? किसी गाड़ी मिल गई, किसी की नौकरी लग गई, किसी खुशी में ही तो प्रसाद बांटते नहीं बांटते हो? तो उसने कहा मेरा घोड़ा गायब हो गया है, इसलिए मैं प्रसाद बांट रहा हूं, मेरा घोड़ा गायब हो गया है। तो कहा क्या बेवकूफ आदमी है, घोड़ा के गायब हो जाने पे प्रसाद बांट रहा है? कहा मैंने सवार को बचा लिया, यदि घोड़े के साथ सवार गायब हो गया होता ना, तो घोड़ा मिलता क्या? हम लोग यही करते हैं, ध्यान देना, घोड़े को बचा लेते हैं और सवार को गायब कर देते हैं। घोड़ा माने क्या हुआ? इस शरीर को हम बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शरीर को जो सत्ता देने वाला कौन है? इसका जो सवाल है इसके बारे में हमें कुछ पता है ही नहीं, तो सवाल तो हमारा क्या हो गया है, बोलो, गायब हो गया है। और 24 घंटे किसके चिंतन लगे हुए हैं, इस घोड़े, इसलिए भाई घोड़ा गायब हो जाए कोई चिंता नहीं करना, एक घोड़ा सवार बचा रहेगा ना तो एक नहीं हजार घोड़े मिल जाएंगे, लेकिन सवार ही गायब हो गया और तुम घोड़े के घोड़े को बचाए भी रहोगे तो घोड़ा बचने वाला इसको तो शमशान में ले जाएंगे, किसको, इस घोड़े को, ये चलने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सवार ही इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आप क्या करना, सवार को बचा लेना, और घोड़ा गायब हो जाए ना तो दुखी नहीं होना, सुखी हो जाना, इसी भाव में ध्यान देना। भगवान राम समझाते हैं किसको, बोलो, तारा को, तारा को, कि जब तुम्हारे जीवन से भोग समाप्त हुए, बाली मरा, कौन मरा, बाली मरा, तो भगवान राम समझाते हैं तारा को, रोने का विषय नहीं, भोग समाप्त हुए तो रोना नहीं चाहिए, आनंदित होना चाहिए, लेकिन जीवन में जब वैराग्य शिथिल भी पड़ जाए तो दुखी होना चाहिए, रोना चाहिए। जब लक्ष्मण बेहोश होते हैं तो राम क्या करते हैं, भाई टाइम हो रहा लेकिन मेरे से एक आदमी ने कहा, महाराज जी उपदेश देना बहुत आसान है, राम ने तो तारा को उपदेश दे दिया, कौन तुम्हारा पति है, शरीर है आत्मा है, यदि शरीर है तो शरीर पड़ा हुआ आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन राम का वही भाई बेहोश हो गया तो राम ने तूफान खड़ा कर दिया, मैं जानता कि मेरा भाई मेरे साथ छूटेगा तो मैं बाप की बात मान करके आता ही नहीं जंगल में, बताओ ऐसा राम कह देते हैं, तो उपदेश देना बहुत आसान है, सही बताओ उसमें मेरी बुद्धि काम नहीं कि मैं क्या जवाब दूं, उसे जवाब भी देने वाला नहीं था क्योंकि मैं तो पहले बोल चुका था, अब कहता भाई लाओ हम तो, लेकिन जवाब भी नहीं सूझा था, सच बता रहा। बाद में विचार किया आखिर बात क्या है, राम जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है, तो उसका एक तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था, जीवन से जब भोग्य पदार्थ नष्ट हुए तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। भोग्य माने पत्नी पति की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का भोग्य, इदं तया संसार नष्ट होवे, घोड़ा गायब हो जाए समाप्त हो जाए तो दुखी नहीं, क्या होना है, सुखी होना है, प्रसाद बांट देना है आकर के प्रेमपुरी में, आज मेरा घोड़ा क्या हो गया है, गायब हो गया है, प्रेमपुरी प्रसाद बांट होगा। लेकिन ध्यान देना, जीवन में वैराग्य यदि शिथिल भी पड़ जाए, वैराग्य शिथिल पड़ेगा कहां, सोने की, भाई सोने की लंका आपको दिख जाए तो वैराग्य क्या हो जाएगा आपका, बताओ, नहीं शिथिल पड़ जाएगा, सोचेगा एक सिक्का तो जेब में डाल ही ले, कुछ भी हो जाए, ये संसार ही सोने की लंका है, संसार को देख करके कभी कभी हमारा वैराग्य क्या हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, तो शिथिल पड़े हुए वैराग्य को क्या करना है, जगाना है, जब तक जगोगे नहीं तब तक संसार से पार जा नहीं सकते हो, और जब तक संसार से पार नहीं जाएंगे तब तक हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो ही नहीं सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुनरात् पूर्णमुदच्यते पुनरस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति।